आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
हमसे जुड़िए जब आप चाहें SBS हिंदी पॉडकास्ट कलेक्शन, SBS ऑडियो ऐप, SBS साउथ एशियन के यूट्यूब चैनल या फिर थर्ड पार्टी पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म जैसे Spotify पर। आप हमें लाइव सुन सकते हैं हर शाम 5 बजे डिजिटल रेडियो टीवी चैनल 305 SBS ऑन डिमांड या फिर हमारी वेबसाइट पर भी।
नमस्कार, मैं हूँ नताशा कॉल SBS हिंदी टीम से। पिछले कई सप्ताह से विक्टोरियन संसद में बहस का अधिकांश हिस्सा राज्य में युवा अपराध का संकट केंद्र बिंदु बना हुआ है, क्योंकि कुछ सालों में अपराध रूपी दलदल में युवा पीढ़ी तेजी से आगे बढ़ रही है,
जिसको रोकने के लिए सरकार कई स्तरों पर काम कर रही है। और हाल ही में राज्य की प्रीमियर जेसिंटा एलन ने भी बेल संबंधी कुछ बदलावों के प्रस्ताव घोषित किए हैं। आपको बता दें,
ऑस्ट्रेलियाई सांख्यिकी ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार विक्टोरिया में युवा अपराध की दर देश की दर से कम तो है, लेकिन विक्टोरियन क्राइम स्टेटिस्टिक्स एजेंसी के आंकड़ों के मुताबिक कथित युवा अपराधी घटनाओं की संख्या में तेजी वृद्धि देखी गई है, जो साल दर साल 16.9% बढ़ रही है। इसी सिलसिले में आज हम जुड़ रहे हैं मेलबर्न की रहने वाली पूनम सिंह से, जो आप बीती बता रही हैं जब कुछ युवाओं ने उन्हें घेर लिया था।
वो एक ऐसे इंसिडेंट था जो रात के टाइम पे मैं बस चला रही थी, ये कोविड टाइम की बात है, और मेरे पर कुछ टीनएजर्स ने, खाली बस थी, कोई पैसेंजर्स नहीं था और कर्फ्यू टाइम था और वो लोग बाहर होने भी नहीं चाहिए थे, लेकिन उस टाइम पे भी उन्होंने मेरी बस जबरदस्ती मेरे रोड के बीच में खड़े होकर के मेरी बस रुकवाई। उस बस में उन्होंने खुद बाहर से दरवाजा खोला और मेरे पे उन्होंने अटैक किया। तो वो जो इंसिडेंट है उसको मुझे रिकवर करने में एक डेढ़ साल तो मुझे बेड से उठने में ही लग गया, क्योंकि वो रात मेरे लिए कभी मैं भूलती नहीं। अभी भी अगर कुछ ऐसा मुझे कोई झुंड दिखाई देता है, सेम टाइप के टीनएजर्स, या फिर कोई मुझे अंधेरा दिखता है, मतलब वो सीन मेरे सामने आ जाता है, मैं अभी मेरा एकदम मैं कांप जाती हूँ कि भाई कुछ होगा, मतलब ऐसे दिमाग में आ जाता है। तो वो हर एक को ही इम्पैक्ट करता होगा जो मैं सोचती हूँ। अभी भी मेरे को इतना टाइम हो गया, वो तो 2021 की बात थी जी। और अभी 25 हो रहा है, तब भी मेरा बॉडी अभी भी रिएक्ट करती है उस चीज के लिए। तो मैं कहती हूँ कि ये जो अभी हमारे प्रीमियर ने जो डिसीजन बोला है कि इसके लिए बेल के लिए, तो मैं तो इस चीज को बहुत सपोर्ट करती हूँ। और जब बाद में मेरे उन लड़कों को पकड़ा गया बाद में, तो ये मुझे पता चला पुलिस के द्वारा कि वो लोग पैरोल पे छूटे हुए थे, उन्होंने पहले ही क्राइम किया हुआ था। तो मैं तो इस चीज को बहुत सपोर्ट करूंगी। और आज की डेट में क्या हो रहा है, जैसे मैं खुद ही अपनी जगह पे देखती हूँ, लड़कियां बहुत आगे आना चाहती हैं, काम करना चाहती हैं। मेरी इंडस्ट्री में जब वो मुझे देखती हैं कि भाई एक लेडी बस ड्राइव करती है, हमें भी करना चाहिए, वो करना चाहते हैं। फिर आके मुझसे बस एक ही क्वेश्चन वो मुझसे पूछते हैं, आप जब अंधेरे में जाती है, रात में जाती है, आपको डर नहीं लगता? तो मैं ना एकदम स्पीचलेस हो जाती हूँ कि मुझे पहले कभी महसूस ही नहीं हुआ था कि कोई डर नाम की चीज भी होती है ऑस्ट्रेलिया में
जी।
मैं डरती नहीं थी, लेकिन वो एक इंसिडेंट होने के बाद में मेरे को सोचने पे मजबूर कर देता है कि हाँ, कि भाई मैं करूं या नहीं करूं, बोलूं कि नहीं बोलूं। फिर मैं उन लड़कियों को बोलती हूँ, मैंने कहा देखिए मिस हैपनिंग तो कहीं अब प्रमोट तो करना है ना, बच्चे को सपोर्ट तो देना है जो मेरे से पूछ रही है क्वेश्चन, मैं उसको ये तो नहीं कह सकती। तो मैं उसको कहती हूँ देखो इंसिडेंट होते हैं, करते हैं, कहीं हो भी जाते हैं, नहीं भी होते हैं, तो उसको तो हम नहीं रोक सकते। हाँ, हम कोशिश कर सकते हैं कि हम ऐसा काम ऐसी जगह पे ना जाएं या कुछ ऐसा इंसिडेंट ना हो हमारे साथ, वो हम हमेशा कोशिश करते हैं। मैं तो कहूंगी कुछ लड़के हैं जो रात को भी मेरे पास, अभी रिसेंटली दो तीन लड़कियों ने हमारी कंपनी में ज्वाइन किया जो रिफ्यूजी आई हैं ऑस्ट्रेलिया में, एक साल हुआ है उनको आकर के, उन्होंने हमारे यहाँ हमारी कंपनी ने उनको गाड़ी चलाना सिखाया इंडिपेंडेंट बनाने के लिए कि भाई वो कुछ काम करे हमारे यहाँ, तो उनको बहुत अच्छी गाड़ी चलानी आ गई, वो चला रही है, लेकिन वही है कि उनको डर लगता है कि कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं होगा, क्योंकि इंसिडेंट तो सुनाई पड़ते हैं ना, रोज न्यूज में आ रहा होता है, इधर आ रहा होता है, तो वो एक इनसिक्योरिटी जो है ना वो लेडीज में और बच्चों में कि बच्चों को अकेला कैसे छोड़ दें घर पे, या हस्बैंड को कहीं जाना है तो अरे मेरी वाइफ अकेली होगी घर पे, तो ये चीज ना पहले नहीं थी, पहले हम कभी दिमाग में सोचा नहीं, पर आजकल रिसेंटली जब से क्राइम रेट इतना बढ़ गया है इतने सालों में तो महसूस होने लग गया है।
जी तो पूनम जी, सबसे ज्यादा सरकार को क्या करने की जरूरत है?
नहीं, सरकार को जो अभी जो स्टेप ले रही है कि भाई बेल जो है वो इतनी जल्दी ग्रांट नहीं करनी चाहिए, उसके ऊपर और ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए, अगर किसी ने वाकई में कोई क्राइम किया है तो उसको उसको सजा मिलनी चाहिए और उसको ध्यान देना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि भाई उसको बिल्कुल चांस मत दो, चांस तो उनसे कुछ काम कराओ, उनसे कुछ और चीजें कराओ जो उनकी लाइफ चेंज कर सके। मैं ये नहीं कहती हूँ कि सजा ही देना एक चीज है, लेकिन हाँ अगर कोई इंसान एक दफे गलती करता है तो वो तो चलो उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी, वो गलती हो गई, लेकिन कहने को तो ये होता है ना कि जो आदमी जो चीज बार बार रिपीट हो रही है वो तो इंटेंशन हो जाती है ना, दैट मीन्स उसकी इंटेंशन ही गलत है, तो उसको किस बात के लिए माफ करना। पहली गलती मानी जा सकती है लेकिन दूसरी तीसरी बार ये करने में तो वो गलती नहीं होती है, वो एक तरीके की उसकी सोच हो जाती है।
इन प्रस्तावित बेल संबंधी बदलावों के विषय में प्रकाश डालते हुए मेलबर्न की लॉयर पालिनी रुद्रा बताती हैं।
आई थिंक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आजकल के टाइम पे, जब हम देख रहे हैं मेलबर्न खासकर विक्टोरिया में इतना क्राइम रेट बढ़ रहा है। बट टू बिगिन विद, जैसे हमारे विक्टोरियन प्रीमियर जेसिंडा एलन ने लास्ट वीक ही अनाउंस किया कि मेलबर्न विल हैव द टफेस्ट बेल लॉज एंड बहुत स्ट्रिक्ट लॉज अब इम्प्लीमेंट होंगे प्रोबेबली फ्रॉम दिस वीक। बट उससे पहले एक आई ओपनिंग इन्फॉर्मेशन हमारे लिए ये है कि जो विक्टोरिया क्राइम स्टैटिस्टिक्स रहे हैं फॉर ईयर एंडिंग सितंबर 2024, जो नंबर ऑफ क्रिमिनल इंसिडेंसेस हैं हैव एक्चुअली इंक्रीज्ड बाय 15%, एंड इफ यू सी इन नंबर्स इट हैज गॉन अप बाय 7 to 8 टाइम्स। तो ये इंक्रीज बहुत मैसिव रहा है अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर स्टैटिस्टिक्स। On the other hand, Natasha, it is very concerning to see कि जो ऑस्ट्रेलिया ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स हैं, विक्टोरिया का इम्प्रिजनमेंट रेट ऑन द कॉन्ट्ररी सबसे लोएस्ट जा चुका है एज कम्पेयर टू द अदर स्टेट्स इन ऑस्ट्रेलिया। तो अगर आप ये देखेंगे कि जो क्राइम रेट है वो बढ़ रहा है एंड इम्प्रिजनमेंट रेट कम हो रहा है, तो नेचुरली देर इज अ डिसबैलेंस इन द सिस्टम एंड दैट इज वाई जो ऑफेंडर्स हैं या रिपीटेड ऑफेंडर्स हैं आई थिंक दे आर क्वाइट लेट लूज एंड तभी ये जो हमारा क्राइम रेट है वो बढ़ता जा रहा है। तो आजकल के टाइम में अगर आप इतने सीरियस ऑफेंसेस देखिए, जैसे रिसेंटली अभी देयर वाज अ मिशेटी अटैक व्हिच लेड टू अ 24 ईयर ओल्ड वाज मर्डर्ड बिकॉज ऑफ दैट, या अगर आप देखिए कार जैकिंग इश्यूज या हाउस इन्वेजन इश्यूज जो बहुत ही कॉमन हो चुके हैं, हर रोज सुनने को मिलते हैं, दिस इज बिकमिंग सीरियस एंड सीरियस बाय द डे। सो इट्स हाई टाइम दैट द गवर्नमेंट हैज टू इम्प्लीमेंट और इम्प्रोवाइज समथिंग इन ऑर्डर टू कर्ब दिस सिचुएशन। तो तभी ये न्यू एंड टफ लॉज आने की, इंट्रोड्यूस होने की बात हो रही है जो नेचुरली आने भी चाहिए। नाउ पहले सिस्टम में ये होता था कि या जो अभी तक बेल लॉज में इम्प्लीमेंट किया जाता है कि जो डिटेंशन एंड कस्टडी है वो इज कंसिडर्ड एज द लास्ट रिजॉर्ट एज अ पनिशमेंट। तो अब जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो ये टेस्ट इम्प्लीमेंट करेंगे फॉर बोथ एडल्ट एंड यूथ ऑफेंडर्स, एंड ये जो लास्ट रिजॉर्ट की आइडियोलॉजी है इसको स्क्रेप ऑफ करेंगे एंड दे विल ब्रिंग इन स्ट्रिक्टर लॉज इन ऑर्डर टू मेक द बेल कंडीशन स्ट्रिक्टर, सो दैट एंड इट विल फोकस बेसिकली ऑन रिपीटेड ऑफेंडिंग। जो नंबर्स में रिपीटेड ऑफेंडर्स हैं या जो बार बार किसी कोई क्राइम करके छूट चुके हैं फिर से क्राइम कर रहे हैं, ये इसको कर्ब करेगा। तो ये लॉज जो जेसिंडा एलन है इनको चेंज करना चाहती है विक्टोरिया में।
जी तो पालिनी ये भी बताएं हमें कि ये कम्युनिटी को कैसे बेनिफिट करेगा और इसको इन लॉज को इफेक्टिवली कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है।
हाँ जी, तो देखिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जिस रीजन के लिए ये लॉज इंप्लीमेंट हो रहे हैं, होपफुली दैट विल बी वन अपसाइड वेयर इट विल एनहेंस द पब्लिक सेफ्टी, कि जो जो हमारी कम्युनिटी है वो सेफ फील करे और सेफ हो, ताकि जो रिपीटेड ऑफेंडर्स लेट लूज हैं उनको ये अपॉर्चुनिटी ना मिले एंड यू नो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए. सेकेंडली जो डेटरेंस ऑफ रिपीटेड ऑफेंडिंग है वो कम हो, कि जो जिसकी जिस जो जो रिपीटेड ऑफेंस कर रहा है उसको पता हो कि अगर वो ये करेंगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे. तो जब तक ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा और कर्ब नहीं होगा तब तक ये प्रोबेबली दिस दिस विल कंटिन्यू. तो एंड एंड थर्डली बेटर कंप्लायंस विद कोर्ट प्रोसीडिंग्स भी होंगी, क्योंकि अभी क्या होता है कभी कभार अगर आप बेल पे छूट जाते हैं तो समटाइम्स दी ऑफेंडर्स आर नॉट मेकिंग इट ऑन टाइम टू द कोर्ट, या डिले करते हैं प्रोसेस को, या दे फ्ली अवे. तो जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स हैं वो भी बहुत हैम्पर होती है इसकी वजह से, एंड एज अ रिजल्ट एक कॉन्सिक्वेंस नहीं निकल के आ पाता है.
पालिनी, आखिरी सवाल, बहुत लोग इस लॉ के अगेंस्ट भी बात कर रहे हैं, तो इसका डाउन साइड क्या रहेगा?
राइट, नहीं आई रियली थिंक नताशा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, बिकॉज हमने हिस्ट्री प्रीवियसली भी फ्यू इयर्स में देखा है कि बेल लॉ स्ट्रिक्ट थे एंड देन 2023 में दे वर अगेन सॉफ्टन्ड और रिड्यूस्ड. राइट, तो द होल आइडिया इज टू इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्टर लॉज, बट द इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन हैज टू बी डन इन द राइट वे. इट कांट हैपन इन अ हेस्ट कि हमने 10 दिन में नए लॉज बना दिए, बिकॉज इट्स अ डोमिनो इफेक्ट. क्योंकि अगर आप बेल लॉज स्ट्रिक्ट लाएंगे तो क्या सिस्टम के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो उसको एंटरटेन कर सके या उसको सपोर्ट कर सके? क्या हमारे प्रिजन्स में इतना स्टाफ है या हमारे इतने पुलिस पर्सनल्स हैं जो इसको एक्शन कर सके, या कोर्ट्स में मैजिस्ट्रेट्स या इतना स्टाफ है हमारे पास कि अगर हमारे बेल लॉ स्ट्रिक्ट हो जाएं तो हम उस हिसाब से वी कैन इवन केटर टू इट और नॉट. सो दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इम्प्लीमेंटेशन इसका प्रॉपरली होना चाहिए ताकि इसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट हो, रादर देन ये नहीं कि आज 6 महीने इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्ट हुआ एंड देन यू नो गवर्नमेंट इज अगेन सॉफ्टनिंग इट और रिड्यूसिंग इट बिकॉज ऑफ एक्स वाई जेड रीजंस. सेकेंडली, कोई अनफेयर डिटेंशन नहीं होनी चाहिए. तो द लॉ मेकर्स हैव टू बी वेरी केयरफुल कि ये रिपीटेड ऑफेंस का मीनिंग क्या होता है, इसका थ्रेश होल्ड क्या होता है, कौन इसको क्वालिफाई करता है, कौन इसको क्वालिफाई नहीं करता है. अदर इफेक्ट्स कैन बी अगेन एज आई सेड, दे कैन बी ओवर क्राउडिंग इन द प्रिजन अगर हमारे पास इतना स्टाफ नहीं है इसको सपोर्ट करने के लिए. एंड लास्टली व्हाट आई रियली बिलीव इज कि एक इम्पैक्ट ऑन वल्नरेबल ग्रुप्स नहीं होना चाहिए, कि हमें ये ग्रास रूट लेवल पे देखना चाहिए कि ये इशू क्यों रिपीटेड ऑफेंस का हो रहा है. इज इट पॉवर्टी, इज इट मेंटल हेल्थ, इज इट सब्सटेंस अब्यूज, या हाउसिंग इंस्टेबिलिटी है, फैमिली हार्डशिप है? तो एज आई सेड, अगर हमारा रिपीटेड ऑफेंस का डेफिनेशन प्रॉपर हो, उसकी रीजनिंग प्रॉपर हो, उसका रिक्विजिट प्रॉपर हो, कि हमें पता हो कि वॉट कॉन्स्टिट्यूट दिस,
बहुत बहुत धन्यवाद पालिनी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए.
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद. हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं.